मुख्य समाचारों में, साइबर खतरे को रोकने के लिए फेडरल सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया में सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप्स के प्रति आह्वान। भारतीय सेना ने बताया कि कोई भी जवान चीन के कब्जे में नहीं। और इंग्लिश रग्बी फुटबॉल यूनियन द्वारा एक लोकप्रिय गीत के ऐतिहासिक संदर्भ की समीक्षा। और लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। फेडरल सरकार ने घोषणा की है कि कुछ महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संगठन एक विदेशी संस्था द्वारा साइबर खतरे का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर सहित सरकार के सभी स्तरों को एक बड़े ही परिष्कृत साइबर ऑपरेटर द्वारा लक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में साइबर गति बढ़ रही है और ऑस्ट्रेलियन संगठनों पर इस खतरे को रोकने के लिए काम किया जा रहा है।
This activity is targeting Australian organisations across a range of sectors, including all levels of government, industry, political organisations, education, health, essential service providers and operators of other critical infrastructure.
रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स का कहना है कि सभी ऑस्ट्रेलियन लोगों को इस खतरे के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें अपने ऑनलाइन सिस्टम को सुरक्षित रखना चाहिए।
साइबर सिक्योरिटी इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस ऑल। फॉर फर्दर एडवाइस ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, आई अर्ज ऑल ऑस्ट्रेलियंस टुडे टू विजिट cyber.gov.au फॉर ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू नीड टू कीप योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर फैमिली सेफ ऑनलाइन।
फेडरल सरकार की योजना है कि छात्रों को उन डिग्रियों के लिए अधिक विश्वविद्यालय प्लेसमेंट दिए जाएं जिनमें भविष्य में नौकरियों के लिए मार्गदर्शन हो सके। यूनिवर्सिटीज अगले साल के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन सरकार के नए मॉडल के तहत छात्रों को ह्यूमैनिटीज और लॉ कोर्सेज के लिए अधिक फीस भरनी होगी। शिक्षा मंत्री डैन तिहन आज विश्वविद्यालय प्लेसमेंट के लिए अपनी पूरी योजना का अनावरण कर रहे हैं, जिसमें अगले 3 वर्षों में यूनिवर्सिटीज में 39,000 अतिरिक्त स्थानों को शामिल किया गया है। उन्होंने एबीसी पर बताया कि टैक्स देने वाले उच्च शिक्षा के लिए लागत से आधे से अधिक कवर कर रहे हैं और उन्होंने सरकारी फंडिंग की योजना के बारे में खुलासा करने की भी बात की।
We want to make sure that we're working with our universities so that they're producing the graduates that our economy needs to power ourselves out of this coronavirus pandemic.
आज हुए फेयर वर्क निर्णय के बाद से ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स को अब न्यूनतम वेतन पर एक सप्ताह में $13 की वृद्धि मिलेगी। जुलाई से एक सप्ताह में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी यानी नेशनल मिनिमम वेजेस $740 से बढ़कर $753 हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन इस साल 4% की बढ़ोतरी पर जोर दे रही थी। इस बीच अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी की दर और अधिक बढ़ जाएगी। मई में 7.1% की वृद्धि के साथ बेरोजगारी दर लगभग 20 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में लगभग 6,00,000 लोगों ने काम खो दिया था। मई में रोजगार में गिरावट दूसरी सबसे बड़ी रिकॉर्ड गिरावट है। फेडरल विपक्ष नेता एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि कई लोग जो वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं उन्हें कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा।
So there's already too many people being left behind. My concern is that more people will be left behind and that will mean that the recession is deeper and will last longer than it needs to.
रविवार 14 जून को लेबर के शाखा स्केटिंग आरोपों के सामने आने के बाद एक फेडरल लेबर फ्रंट बेंचर ने पार्टी की इस स्थिति के बारे में अवलोकन किया है। विक्टोरियन सरकार के 3 मंत्रियों ने अपनी नौकरी खो दी है और उनमें से एक एडम सोयुरेक ने शाखा सदस्यता के बारे में आरोपों को खारिज करते हुए अपनी अभद्र भाषा के उपयोग के लिए माफ़ी मांगी है। फेडरल लेबर नेता एंथनी एल्बनीसी ने भी श्री चोमीरेक के द्वारा लीक हुए एमपी एंथनी बर्न के टेक्स्ट संदेशों की आलोचना की है और उन्हें अनुचित बताया है। विपक्ष के उपनेता रिचर्ड मार्लिस ने चाहे श्री बायरन के राजनीतिक रिकॉर्ड से तो बचत की, लेकिन सहयोगियों के बारे में उनकी कथित आलोचनात्मक टिप्पणियों का समर्थन नहीं किया। ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन जेटस्टार और क्वांटस ने अधिक यात्रियों को उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सस्ते हवाई किराए और अन्य ऑफर्स की घोषणा की है जब कोरोना वायरस के प्रतिबंध कम होंगे। बजट प्रोवाइडर जेटस्टार ने अंतरराज्यीय यात्रा के लिए एक तरफा किराए में छूट की पेशकश की है और क्वांटस घरेलू उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए सभी मार्गों पर फ्लायर पॉइंट्स को तिगुना कर रहा है। भारत ने चीन के साथ संघर्ष के दौरान मृत सैनिकों को सम्मानित किया है और सैनिकों का अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार रात गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की जान चली गई थी। भारत के विदेशी प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा,
While we remain firmly convinced of the need for maintenance of peace and tranquility in the border areas and the resolution of differences through dialogue, at the same time, as Honorable PM stated yesterday, we are also strongly committed to ensuring India's sovereignty and territorial integrity.
श्री श्रीवास्तव का कहना है कि चीन और रूस के साथ अगले सप्ताह 23 जून को त्रिपक्षीय बैठक भी होगी। और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार सेना ने चीनी हिरासत से किसी भी सैनिक की रिहाई पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये स्पष्ट किया है कि कार्यवाही में कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। सेना के अधिकारियों ने ये जानकारी भी दी है कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना का कोई भी जवान अब गंभीर रूप से घायल नहीं है और सबकी हालत स्थिर है। लेह के अस्पताल में 18 जवान हैं और इसके अलावा 56 जवान दूसरे अस्पतालों में हैं और वो एक हफ्ते के अंदर ही ड्यूटी पर लौट आएंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प मुद्दे पर कल गुरुवार को भी दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की दूसरे दौर की बातचीत भी परिणाम रहित रही। दोनों पक्ष किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर हालात को लेकर चर्चा करने के लिए आज वहाँ शाम 5 बजे सर्वदलीय डिजिटल बैठक बुलाई है। इस डिजिटल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। ब्रिटेन के विदेश सचिव घुटने टेकने की बात पर आलोचना का सामना कर रहे हैं। ये एक प्रतीक है जो गेम ऑफ थ्रोज श्रृंखला के लिए नस्लीय समानता का सपोर्ट करता है। डोमिनिक रॉब का कहना है कि वो ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन के पीछे की हताशा को समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो केवल रानी या उनके पार्टनर के लिए ही घुटने टेकेंगे। श्री रॉब कहते हैं कि ये एक व्यक्तिगत पसंद है और हर कोई कार्यवाही के बारे में अलग तरह से महसूस करता है।
I've got to say on this taking the knee thing, which I don't know, maybe it's got a broader history, but seems to be taken from the Game of Thrones, feels to me like a symbol of subjugation, subordination, rather than one of liberation and emancipation.
और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 68 सेंट और भारत के 52 रुपए 29 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में इंग्लिश रग्बी फुटबॉल यूनियन एक लोकप्रिय पसंदीदा गीत स्वाइन लो स्वीट चैरियर के ऐतिहासिक संदर्भ की समीक्षा कर रही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी से संबंधित एक आध्यात्मिक धुन है। 1960 के नागरिक अधिकारों के आंदोलन के दौरान लोकप्रिय होने के बाद से ये गीत अक्सर ट्विकेनहैम में सुना जाता है, लेकिन यूनियन का कहना है कि कई लोग इसकी उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ से अनजान हैं। यूनियन का कहना है कि वो अधिक विविधता हासिल करना चाहती है और ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन के मद्देनज़र प्रशंसकों को इस ओर जागरूक करने और शिक्षित करने में उनकी भूमिका है। और अब बात मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। होबार्ट में बौछारों में तेजी आएगी, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। कैनबरा में बारिश, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।